नमस्कार, सोचिए अगर आपके हाथ एक ऐसा ब्लूप्रिंट लग जाए जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि पूरे समाज को बदलने का रास्ता दिखाता हो। आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है हमारा युग निर्माण सत्संकल्प,
जिसे लिखा है पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने।
हाँ, और सुनने में ये नाम बहुत भारी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन जीने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक यूनिवर्सल गाइडबुक है।
और जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो ये है कि इसकी शुरुआत किसी बाहरी क्रांति से नहीं बल्कि हमारे अंदर से होती है।
बिल्कुल, ये आउटसाइड इन नहीं, इनसाइड आउट अप्रोच है। ये कहता है कि अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहला हथौड़ा खुद पे चलाना होगा।
आज हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके सिद्धांत आज भी इस डिजिटल युग में उतने ही प्रासंगिक क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले उस शब्द को ही समझते हैं जो इसके नाम में है, संकल्प। ये कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा तो नहीं है जो 15 जनवरी तक हम भूल जाएं?
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
तो फिर ये संकल्प है क्या और इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है?
देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इच्छा तो हम सबके मन में होती है।
हाँ, अमीर बनने की, स्वस्थ रहने की।
बिल्कुल, लेकिन जब उस इच्छा में हमारी बुद्धि, हमारी समझ भी शामिल हो जाती है और दोनों मिलकर एक दृढ़ निश्चय बना लेते हैं, तब वो संकल्प बनता है।
अच्छा,
ये वो पॉइंट है जब आपका दिल और दिमाग दोनों एक ही टीम में खेलने लगते हैं और कहते हैं ये तो करना ही है चाहे जो हो जाए।
मतलब ये सिर्फ एक चाहत नहीं बल्कि एक सोचा समझा पक्का इरादा है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये विशाल ब्रह्मांड भी तो परमात्मा के एक ही संकल्प का नतीजा है। एको अहम बहु स्यम,
मैं एक हूं बहुत हो जाऊं।
हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक बीज से पूरा जंगल बन जाता है, वैसे ही एक संकल्प में पूरा ब्रह्मांड बनाने की शक्ति होती है।
ठीक है, तो मान लिया कि संकल्प में बहुत शक्ति है, लेकिन युग निर्माण जैसी इतनी बड़ी बात का संकल्प, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? किसी बड़े आंदोलन से?
नहीं, इसकी शुरुआत होती है सबसे छोटी लेकिन सबसे मुश्किल जगह से, खुद से।
खुद से?
हाँ, यही इस सत्संकल्प का मूल मंत्र है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। समाज कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है ना?
नहीं, ये तो हम और आप जैसे लोगों का ही एक समूह है।
बस, अगर हर व्यक्ति खुद को तराशने लगे तो समाज तो अपने आप चमक जाएगा।
ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर असल में खुद को सुधारना ही तो सबसे बड़ा पहाड़ लगता है।
लगता है।
तो क्या इस सत्संकल्प में कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है, कोई शुरुआती कदम?
हाँ, इसमें आत्मनिर्माण यानी सेल्फ डेवलपमेंट के चार मजबूत स्तंभ बताए गए हैं। पहला है ईश्वर पर आस्था।
मतलब पूजा पाठ?
नहीं, सिर्फ उतना नहीं, इसका गहरा मतलब है। इस विश्वास के साथ जीना कि एक सर्वव्यापी और न्याय करने वाली शक्ति है जो हमारे हर काम को देख रही है।
अच्छा,
ये विश्वास एक तरह का नैतिक कंपास बन जाता है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। ये डर नहीं, एक जिम्मेदारी का एहसास है कि हर कर्म का फल मिलता है।
ये तो एक तरह से सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हुई। दूसरा स्तंभ क्या है?
दूसरा है स्वस्थ शरीर। सत्संकल्प कहता है कि इस शरीर को भगवान का मंदिर समझो।
आज के दौर में हम फिटनेस और वेलनेस की कितनी बात करते हैं।
करते हैं, लेकिन अक्सर उसे बाहरी दिखावे तक सीमित कर देते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि संयम और नियमितता से शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि यही वो साधन है जिससे आप अपने और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं।
सही बात है, एक बीमार व्यक्ति न खुद के लिए कुछ कर पाता है न दूसरों के लिए।
बिल्कुल,
और मन की सेहत, उसका क्या? आज के दौर में मेंटल हेल्थ तो शायद फिजिकल हेल्थ से भी बड़ा मुद्दा है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तीसरा स्तंभ है स्वस्थ मन, और इसका उपाय बताया गया है स्वाध्याय और सत्संग।
स्वाध्याय और सत्संग?
हाँ, इसे आज के संदर्भ में देखें तो स्वाध्याय का मतलब है अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे विचार, ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनना, मतलब आप अपने दिमाग को कैसा कंटेंट दे रहे हैं।
और सत्संग?
सत्संग का मतलब है ऐसे लोगों की संगत में रहना जो आपको ऊपर उठाते हैं न कि नीचे खींचते हैं। जैसे शरीर को पौष्टिक भोजन चाहिए, वैसे ही मन को अच्छे विचार चाहिए।
ये तो आज की इन्फॉर्मेशन डाइट वाली बात हो गई। हम सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है।
एकदम। और चौथा स्तंभ वो है चार तरह का संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम।
ये आज के युग के लिए शायद सबसे जरूरी
है। बहुत जरूरी। इंद्रिय संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं के गुलाम ना बनना। अर्थ संयम यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन।
आज का पूरा कल्चर बाय नाउ पे लेटर पर टिका है।
बिल्कुल, ये सिद्धांत हमें फिजूल खर्ची और दिखावे से बचकर अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाने की बात करता है।
और समय संयम, आज तो सबसे बड़ी लड़ाई ध्यान भटकने से है। हमारा समय कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता,
इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। समय संयम का मतलब है अपने समय की कीमत समझना और उसे बेकार की चीजों में, जैसे घंटों तक बेवजह रील स्क्रॉल करने में, बर्बाद ना करना। और आखिर में है विचार संयम, यानी अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। ये चारों संयम हमारी ऊर्जा को लीक होने से बचाते हैं।
ठीक है, तो एक बार व्यक्ति ने इन चार स्तंभों पर काम करके खुद को सुधार लिया, पर इसका असली टेस्ट तो तब होता है जब वो समाज में दूसरों के साथ व्यवहार करता है।
इसका असली इम्तिहान वहीं होता है। सत्संकल्प का पांचवा सूत्र कहता है कि खुद को समाज का एक अभिन्न अंग समझो। जैसे हाथ का हित पूरे शरीर के हित से जुड़ा है, वैसे ही हमारा हित पूरे समाज के हित से जुड़ा है। ये मैं से हम की यात्रा है।
क्या है? दूसरों के साथ वो व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं।
ये तो गोल्डन रूल है जो हर धर्म हर संस्कृति में सिखाया जाता है।
हाँ, लेकिन कहना बहुत आसान है
और करना उतना ही मुश्किल। असल जिंदगी में जब हमारा अपना फायदा दांव पर लगा हो तो इस आदर्श पर टिके रहना लगभग नामुमकिन सा लगता है।
बिल्कुल, सत्संकल्प में ही इसके कुछ सटीक उदाहरण हैं। जैसे ट्रेन में जब हमें सीट चाहिए होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई सिकुड़कर हमें जगह दे दे,
और जब हमें सीट मिल जाती है तो हम पैर फैलाकर ऐसे बैठते हैं कि कोई और ना बैठ पाए।
हाँ, ये तो रोज देखने को मिलता है।
एक और तीखा उदाहरण है, हम अपनी बेटी के लिए ऐसा वर चाहते हैं जो दहेज न ले, लेकिन अपने बेटे की शादी में दहेज मांगने से हिचकते नहीं। ये जो लेने और देने के लिए अलग अलग तराजू है ना, समाज में ज्यादातर झगड़ों और अशांति की जड़ यही दोहरी मानसिकता है।
इसी से जुड़ा एक और सवाल मन में आता है। आज की दुनिया में सफलता को बहुत पूजा जाता है, भले ही वो किसी भी रास्ते से आई हो। हम किसे सम्मान दे, इस बारे में भी ये सत्संकल्प कुछ कहता है?
ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। सूत्र 10 कहता है कि किसी भी इंसान का मूल्यांकन उसकी सफलता, अमीरी या पद से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों की अच्छाई से करो।
लेकिन आज का समाज तो चमत्कार को नमस्कार करता है।
बिल्कुल, कोई कैसे भी करके सफल हो जाए, लोग उसे पूछने लगते हैं। इससे होता यह है कि लोगों को लगता है कि सफल होने के लिए गलत रास्ता अपनाना भी ठीक है।
तो इसका समाधान क्या है?
समाधान हमारे हाथ में है। हमारा आदर और अनादर समाज की दिशा तय करता है। सत्संकल्प कहता है कि गलत तरीके से अमीर बने व्यक्ति का तिरस्कार करो,
और सही रास्ते पर चलकर अगर कोई असफल भी हो गया है तो उसका सम्मान करो।
हाँ, उस हार में भी एक शान है। जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो समाज में सही मूल्यों को अपने आप बढ़ावा मिलेगा।
सामाजिक व्यवहार का एक और जरूरी पहलू है पुरुष और स्त्री के बीच का संबंध। इस पर क्या दृष्टि दी गई है?
इस पर बहुत ही पवित्र और सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है। बारवां सूत्र कहता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे को पवित्र दृष्टि से देखें।
मतलब
एक पुरुष के लिए स्त्री केवल आकर्षण का केंद्र नहीं है, बल्कि वो माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में सम्मान की योग्य हैं। प्रेम और वासना में स्वर्ग और नरक जितना अंतर बताया गया है। वासना में ईर्ष्या, जलन और अंत में पतन है, जबकि पवित्रता पर आधारित प्रेम में त्याग, उदारता और शांति है।
तो ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की बात नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, जिम्मेदार नागरिक बनकर एक बेहतर दुनिया बनाने की भी बात है।
बिल्कुल, ये सत्संकल्प हमें सिर्फ आत्म सुधार तक रोकता नहीं, ये हमें समाज सुधार के लिए मैदान में उतरने के लिए भी प्रेरित करता है।
कैसे?
यहाँ विवेक यानी तर्क और समझदारी को अंधी परंपराओं से ऊपर रखने को कहा गया है।
इसका कोई उदाहरण?
जैसे शादी ब्याह में दिखावे के लिए की जाने वाली बेहिसाब फिजूल खर्ची, मृत्यु भोज जैसी कुलीतियाँ या दहेज प्रथा।
हाँ, ये ऐसी परंपराएं हैं जिनका कोई तर्क नहीं है, बस भेड़ चाल में हम उन्हें निभाते जा रहे हैं।
सत्संकल्प में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है, जैसे कागज का रावण देखने में बहुत डरावना लगता है पर अंदर से खोखला होता है, वैसे ही ये कुरीतियां भी संगठित विवेक के सामने टिक नहीं सकती।
और सिर्फ सवाल पूछना ही काफी नहीं है, शायद अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी जरूरी है।
यही इसका सबसे शक्तिशाली संदेश है। एक सूत्र कहता है, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे।
मतलब गलत रास्ते से मिली जीत से वो हार अच्छी है जो सही रास्ते पर चलकर मिली हो।
एकदम। और दूसरा सूत्र कहता है कि सज्जनों को, अच्छे लोगों को संगठित होना होगा और अनीति से लोहा लेना होगा। चुपचाप बैठकर तमाशा देखना कायरता है।
तो ये पैसिव गुडनेस की बात नहीं करता, ये एक्टिव गुडनेस की बात करता है।
एकदम सही।
अन्याय करना पाप है, पर अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है।
पूछे गुरुदेव महाभारत का उदाहरण देते हैं,
श्री कृष्ण और दुर्योधन का।
हाँ, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की हर कोशिश की, लेकिन जब सब नाकाम हो गया तो उन्हें भी युद्ध का रास्ता अपनाना पड़ा। उसी तरह हमें भी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सक्रिय होना होगा।
इस नए युग का आदर्श क्या होगा? कैसी दुनिया की कल्पना की गई है?
एक ऐसी दुनिया जो एकता और समता पर आधारित हो। 16वां सूत्र कहता है कि हम राष्ट्रीय एकता और समानता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे।
मतलब वसुधैव कुटुंबकम।
बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि भविष्य की दुनिया इसी आदर्श पर टिकेगी।
ये सुनने में एक भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये पूरी दुनिया एक बड़ा सा परिवार है और हम सब उसके सदस्य हैं। बस
यही इसका सार है। धर्म, भाषा, देश की ये बनावटी दीवारें एक दिन गिर जाएंगी और सिर्फ एक ही धर्म होगा, मानव धर्म।
और इस बड़े काम में हर किसी के योगदान की बात भी कही गई है।
हाँ, अपने समय, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान और अपने धन का एक छोटा सा अंश नियमित रूप से अच्छी प्रवृत्तियों को फैलाने में लगाना, इसे ब्रह्मदान या ज्ञानदान कहा गया है,
जो सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ है।
सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि पैसे से की गई मदद अस्थाई होती है, पर किसी को दिया गया अच्छा विचार या सही ज्ञान उसे हमेशा के लिए अपनी समस्याओं को हल करने लायक बना देता है।
हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जो शायद सबसे ज्यादा आत्मविश्वास देने वाला है। एक सूत्र कहता है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ये उस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है।
ये समझना बहुत जरूरी है, भाग्य कोई आसमान से लिखी हुई चिट्ठी नहीं है, वो हमारे ही पिछले कर्मों का नतीजा है।
अच्छा।
पूज्य गुरुदेव इसे एक सरल उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कल जमाया हुआ दूध आज दही बन जाता है, वैसे ही हमारा कल का किया गया पुरुषार्थ यानी मेहनत आज का भाग्य बनकर हमारे सामने आता है।
मतलब हमारा आज का पुरुषार्थ ही हमारा कल का भाग्य लिखेगा।
बिल्कुल। परमात्मा ने किसी का भाग्य अच्छा या बुरा नहीं लिखा, उसने सबको कर्म करने की आजादी दी है। इसलिए ग्रहों को कोसने के बजाय हमें अपने आज के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए।
और अंत में वो महामंत्र जिसके इर्द गिर्द ये पूरा सत्संकल्प बुना गया है,
18वां और आखिरी सूत्र,
हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।
और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक गहरा विश्वास है। युग परिवर्तन की शुरुआत किसी और से नहीं, किसी मसीहा के आने से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी मनोभूमि के बदलने से होगी। केवल उपदेश देने से या बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखने से दुनिया नहीं बदलती। दुनिया तब बदलती है जब कुछ लोग उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं और अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरणा देते हैं।
तो हमने देखा कि हमारा युग निर्माण सत्संकल्प वाकई एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। ये एक प्रैक्टिकल रोडमैप है जो हमें बताता है कि कैसे एक दृढ़ इरादे के साथ खुद को सुधारते हुए,
समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और अन्याय के खिलाफ खड़े होके हमने सिर्फ अपना बल्कि पूरे युग का निर्माण कर सकते हैं।
और इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी जगह से होती है, हमारे अपने मन से।
बिल्कुल। ये हमें कर्म का मार्ग दिखाता है, जहाँ सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना सबसे जरूरी है।
और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि ज्ञान और आचरण में एक फासला होता है। हम जानते हैं कि क्या सही है पर कर नहीं पाते।
ये एक बड़ी चुनौती है।
तो विचार करने योग्य बात यह है कि इस दूरी को कैसे पाटा जाए। आज हमने जिन 18 सूत्रों पर बात की, उनमें से किसी एक को अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे साहसिक कदम क्या हो सकता है जिसे आज ही लिया जा सके।